हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी। लेकर आई हूँ सादत हसन मंटो की लिखी कहानी खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों बाद मोगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से घायल हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली तो अपने चारों ओर मर्द, औरत और बच्चों का ठाठे मारता समुन्दर देखा। उसके सोचने समझने की शक्तियां और भी क्षीण हो गईं और वो काफी देर तक मटमैले आसमान की ओर टकटकी बांधे घूरता रहा। यूं तो कैंप में चारों ओर शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही समझता कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। असल में उसके सारे होशो हवास शिथिल हो चुके थे, बल्कि पूरा शरीर, सारा अस्तित्व शून्य में लटक गया था। मटमैले आसमान की ओर बिना किसी उद्देश्य के देखते देखते सिराजुद्दीन की नजरें सूरज से जा टकराई। तेज रोशनी उसके जर्जर शरीर की नस नस में उतर गई और वो जाग उठा और उसके दिमाग में एक के बाद एक कई तस्वीरें घूम गईं। लूटमार, आग, भागदौड़, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और उसने पागलों की तरह अपने चारों ओर फैले हुए समुंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की धूल छानता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी जवान इकलौती बेटी का पता नहीं चला। चारों ओर एक खागली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीबी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां बिछुड़ी थी। इसी सोच विचार में उसका दिमाग बार बार सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई थीं, और फिर इसके आगे वो कुछ ना सोच पाता। सकीना की मां मर चुकी थी, उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके बारे में सकीना की माँ ने मरते समय कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। फिर सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था और उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा था। इस पर सकीना ने चिल्ला कर कहा था, अप्पा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था और ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डालकर कपड़ा निकाला, सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई भीतर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठा ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों ओर जितने भी इंसान फैले हुए थे उन सब को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी सहायता नहीं की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 दिन बाद होशो हवास कुछ ठिकाने आए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी सहायता करने को तैयार थे। 8-9 जवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दीं और सकीना का होलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर ने अपनी माँ पर थे। उम्र यही 17 बरस के करीब, आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल, दाहिने काल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़ी हमदर्दी के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को विश्वास दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो 2-4 दिन में ही उसके पास पहुंच जाएगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन 10 दिन हो गए, सकीना उन्हें कहीं ना मिली। एक दिन वे इसी सेवा कार्य के सिलसिले में लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि छरहटे के पास सड़क के किनारे उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदगी और उसने सरपट भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने भी तुरंत लारी रोकी और उतरकर सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को जा पकड़ा, देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल भी था। एक नौजवान ने उससे कहा,
घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है?
लड़की का रंग पीला पड़ गया, उसने कोई जवाब ना दिया। फिर जब बारी बारी सारे नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी घबराहट कुछ दूर हो गई और उसने मान लिया कि उसका नाम सकीना है और वो सिराजुद्दीन की बेटी है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा लिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांपने की असफल कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता ना चला। रात को बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा, लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा,
बेटा, मेरी सकीना का पता चला?
सबने यक जबान होकर कहा,
चल जाएगा,
और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश मिली थी, लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लग कर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था, एक स्ट्रेचर था जिस पर लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा,
क्या है?
सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकला,
जी मैं इसका बाप हूं।
डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा,
खिड़की खोल दो।
सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई।
बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया।
ये थी सादत हसन मंटो की लिखी कहानी खोल दो। वाचन स्वर सुखरंदन बिंद्रा का था।